आयत नंबर 31 से देखेंगे, 22वां पारा शुरू होता है। सबक नंबर 210 ही की कंटिन्यूएशन है। पिछले ही वाक्य के साथ इस आयतों को मिलाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के एक मुतालबे के नतीजे में जब आयत तहरीर नाजिल हुई, तो उसके बाद अब अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनात और मुस्लिमात, ऐसी औरतों को जो वाकई ख़ुद को दूसरों से प्रोमिनेंट करना चाहती हैं, जो दूसरों से आला दर्जे पर रहना चाहती हैं, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए। देखते हैं आयत नंबर 31। वमई यकनुत मिन कुन लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व तदना लहा रिज़्क़न करीमा। और जो तुम में से फरमाबरदार बनी रही अल्लाह की और उसके रसूल की और नेक अमल करती रही, तो हम उसका अजर दो बार देंगे और हमने उसके लिए इज्जत वाली रोजी तैयार कर रखी है। बड़ी ही प्यारी आयत है, और औरतों के लिए खुशी की बात यह है कि ये पारा मुअन्नस के सीगों से शुरू हो रहा है। वह मैं यकनुत, और जो कोई तुम में से कनूत करेगी। यकनुत का लफ्ज़ जो है कनता से है, पीछे हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके, कनूत हज़रत मरियम के तस्करे में भी गुजर चुका, उकनुती ली रब्बी की वस्जुदी वरकाई सूरत आले इमरान में। तो कनूत कहते हैं खुशू और खुदू को, खुशू खुदू इतात और अमल को। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, ये फ़र्क देख लेंगे तो इंशाल्लाह कनूत को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। कनूत में एक चीज़ होती है आजजी, हम्बलनेस, ह्यूमिलिएशन। दूसरा होता है दवाम, हमेशगी। कानित कौन है या कानिता कौन है? जो नेकी मुसलसल भी करे और नेकी करने के बाद आजिज भी रहे, अकड़ नहीं, बहुत बड़ा बनना नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के उस मामलों पे राज़ी भी रहे। अल्लाह सुबहान ताला ने यहाँ वमई यकनुत, कौन तुम में से, किन में से, पीछे बात अज़्वाज मुतहरात की थी तो बतौर ख़ास उनके लिए, लेकिन फिर बतौर आम हर वो औरत जो वाकई अल्लाह की बंदी बन के जीती है, जो भी कोई अपने आप को मोमिनात में शामिल करना चाहती है, उसके लिए यही पैगाम है कि फरमाबरदारी करती रहे। ये नहीं कि मुश्किल पड़ी तो खूब इबादत, मुश्किल टली तो इबादत ख़त्म। मुसीबतों में, तकलीफ़ों में जाए नमाज, तस्बियाँ, मुसल्ले, सब कुछ आ गए, और उसके बाद जब निकल गए, पलट गए, तो वापस ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम करे इंसान हमेशा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का ख़ुलासा है कि अल्लाह की नज़र में सबसे प्यारे अमल वो हैं कि अदवमुहा व इन कल्ला। अदवमु का लफ्ज़ दवाम से ही है, जो हमेशा किए जाएँ अगरचे वो थोड़े हों। अल्लाह के नबी ने पूछा अब हज़रत बिलाल से कि आपके कदमों की चाप मैंने जन्नत में सुनी है, क्या अमल करते हैं? कहा कुछ नहीं, बस वज़ू करता हूँ तो दो नफिल पढ़ता हूँ। कहा बस तेरे ये दो नफिल तुझे जन्नत में ले जाएंगे। तो वो दो नफिल जो हमेशा पढ़े जाएं, उसको आदत बनाकर, उन नफलों से बहुत अच्छे हैं जो किसी मुसीबत के आने पर 100-200 की नीयत करके या मन्नत मान के पढ़े जाएँ। तो हम सबको अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाना है कि अल्लाह ताला से हम इस चीज़ की दुआ कर सकें कि जो काम शुरू करें अल्लाह ताला उस काम को अच्छे तरीके से हमेशा करने वाला बना दे। कभी करना कभी ना करना, ये क्या हुआ? कभी आना कभी ना आना, कभी सुनना कभी ना सुनना, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इंसान को खुद भी गैर हमवार कर देती हैं। आप देखिए कि हम गाड़ी में बैठते हैं तो कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, किसकी ड्राइविंग अच्छी लगती है जो झटके ना दे। कभी आप किसी गाड़ी में सफ़र करें और गाड़ी हिले, कभी झटका, कभी कुछ, तेज़ हल्की, तेज़ हल्की, मुश्किल लगता है ना। जितनी दफ़ा ट्रेन रुकती है उतनी दफ़ा आप देखें दिल भी हिलता, एकदम स्पीड तेज़ है फिर कम करते हैं वो, फिर चलती है तो फिर एकदम झटके लेते हुए चलती है। जबकि एक स्मूथ स्पीड पर जब चल रही होती है तो आपको एहसास भी नहीं होता कि गाड़ी चल रही है या जहाज चल रहा है। बिल्कुल नेकियों की रफ़्तार भी इंसान की जब हमवार हो जाती है तो फिर उसके बाद उसको वो चीज़ फ़ायदे की लगती है और वो अच्छे तरीके से मामला होता है। फिर दूसरी बात देखिए कि इसमें आ रही है तामल सालेहन की। पहले कनूत की बात थी, फिर अमल साले की थी। तो अमल साले क्या है? नेक अमल करना अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक। लिख लें, अमल साले की दो बुनियादें हैं। नंबर एक इखलास, लिल्लाहियत, सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, कोई रिया नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी की खुशी नहीं चाहिए, कोई किसी से तारीफ़ के सर्टिफिकेट नहीं लेने। और दूसरी उसवा हसना की रोशनी में, पीछे पढ़ चुके हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से किया जाए। बस ये है पहचान अमल सवाले की, अल्लाह के लिए करें और नबी के तरीके से। हर अच्छा काम नेक अमल नहीं होता। आज के दौर का एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अच्छे काम और नेक काम में फ़र्क नहीं देखते। हम कहते हैं लो फलां भी तो इतने अच्छे काम करते हैं, ज्यूज़ भी इतने अच्छे काम करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, अच्छा काम कर लें आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो नेक काम नहीं हो सकता। नेक काम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जो है वो लाजमी है उस काम के ऊपर लगे। फिर फरमाया कि हम देते हैं उसको नूतिहा अजरहा मर्रतैन, उसके आमाल का अजर हम दो बार देंगे। दो बार कहाँ दिया जाएगा? नंबर एक दुनिया में, और फिर दुनिया में, ये दो बार हैं, और फिर आतत ना लहा रिस्कन करीमा। अब सवाल पैदा होता है कि नेकियों का अजर दुनिया में दुगना कैसे होता है? अब देखिए कि जब बंदा नेकी करता है ना, एक तो उस नेकी से उसको दुनिया में खुद को खुशी मिल रही होती है, और एक उसकी वजह से दूसरे को खुशी मिल रही होती है। आप सदका करते हैं, आपके हाथ से सदका जिसने लिया उसको खुशी हुई, तो आपके अपने दिल को भी सुकून मिला। हर नेकी दोहरी खुशी देती है। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, आप खुश होते हैं उस दिन, और वो दूसरा भी आपसे खुश हो रहा होता है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपको खुशी हुई, तो अल्लाह ताला को आपको नमाज़ पढ़ता देखकर खुशी होगी। बस ये है, दुनिया में भी दुगना अजर देंगे। हदीस में आता है कि तीन लोगों को उनके आमाल का अजर दुगना मिलता है। नंबर एक अहले किताब, जो इस्लाम कबूल कर ले, पिछली शरीयत को मानने का और इस शरीयत को मानने का। दूसरा वो ग़ुलाम जो अल्लाह के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखने या अल्लाह के आगे बहुत अमानतदार होने के साथ साथ अपने मालिक का भी खैर ख्वाह हो, यानी मालिकों के साथ ख़यानत ना की जाए, सिंसियर रहना, मुहसिनों के साथ एहसान करना। और तीसरा वो शख्स जो किसी लौंडी को आज़ाद करे, फिर उससे निकाह कर ले, तो उसको आज़ादी की ज़िंदगी दे, तो मर्रतैन, दो दुगना अजर। मैं सोचती हूँ कि बंदा जितने मुश्किल हालात में नेकी करता है उतना अजर बढ़ जाता है। और रिस्कन करीमा, यहाँ रिस्क करीम क्यों आया? इसलिए कि अमूमन एतात और फरमाबरदारी में दुनिया में बंदा रुसवाई हो जाता है। रुसवा से कह लें कि लोगों की नज़रों से निकल जाता है। ज़रा सा हिजाब पहनने लगे तो लगा मार्केट वैल्यू ख़त्म हो गई, और अब तो ये हो गया और अब तो वो हो गया। का अगर अल्लाह के लिए आज दुनिया में थोड़े बहुत दुनिया की नज़रों में तुम पीछे चले भी गए हो, तो कोई बात नहीं, वहाँ रिस्कन करीमा मिलेगा, करामत वाला इज़्ज़त वाला रिस्क अल्लाह ताला देंगे। फिर उसके बाद फरमाया, या निसान नबी जी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्नक अहद मिन निसाई, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, यानी यू आर स्पेशल लेडीज़, तुम तो चोजन लेडीज़ हो, तुम तो मिस वर्ड्स हो, या तुम तो फर्स्ट लेडीज़ हो, तुम कोई आम औरतें नहीं हो। शरायत हैं कुछ, इन तकीतुन्ना, अगर तुम परहेजगारी रखो, तकवा रखो, यानी बीवी हो नबी की, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑनर है, लेकिन अगर तुम में तकवा नहीं होगा तो नबी की बीवी होना भी काम नहीं देगा, जैसे हज़रत लूत और हज़रत नूह की बीवियों को ना मिला। इसी तरह अल्लाह के नबी ने भी एक औरत से शादी की थी, शादी की रात ही उसने कह दिया मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ अल्लाह की। अल्लाह के नबी ने कहा तूने इतने बड़े की पनाह मांग ली, जा फिर तू मेरी तरफ से आज़ाद है। शादी की रात ही उसको अपने तलाक दी, उसने खुद मांग ली। नसीब, बंदा समंदर के पास से गुजर जाता है प्यासा रहता है, उसका नसीब। ये तो आप बंदे बंदे की बात है, नहीं उसको आपकी कदर आई, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया, अल्लाह ने और बीवियाँ दे दी। तो इन तकई तुन्ना, असल तकवा। बस लोग नस्बतों पर खुश होते हैं, मेरा शौहर हाफिज़ है, फिर आप क्या, मेरा शौहर आलिम है, आप क्या, मैं आलिम की बीवी हूँ, तो आलिम की बीवी हैं तो आलिमा तो नहीं बन गई ना, नहीं, आप क्या हैं, इससे पता चलता है कि आपका मामला कैसा है। दूसरी बात देखिए कि लस्तुन्न का हदम, तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो, ये अंदाज़ कितना उभारने वाला है। मुझे तो ये जुमला इतना प्यारा लगता है, क़ुरान की तरफ आने वाली सिस्टर्स को कहना और उनके लिए इस बोलना। और आप सबको भी यही कहूँगी कि आप भी अब आम औरतों की तरह नहीं रहीं। आपकी पहचान कुरान बन चुका है। आप जाने ना जाने लोग अब ये जानते हैं कि आप कुरान पढ़ रही हैं। अब आपका शादियों में हाल हो लिया, आपके मामलात, आपके ताल्लुकात, आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात, घर वालों से लोग कुरान की रोशनी में देखते हैं। आप कुरान की रोशनी में जीते हैं कि नहीं जीते, इसका ताल्लुक इनितकईतुन्ना से है, लेकिन लोग आपको अब कुरान से देखते हैं। अगर आपने अपने कुरान को वो जगह ना दी ना जितनी देने की ज़रूरत है, तो समझ लीजिए कि आपने उस चीज़ की कदर नहीं की। हम बस दफ़ा दो कश्तियों में रहना चाहते हैं, दीन के तकाजे भी हैं, दुनिया के भी हैं। फिर दुनिया वालों में जाते हैं तो उनको खुश करने के लिए उन्हीं के काम करने लगते हैं, ख़ास तौर पर खुशियों, शादियों, गमों, फंक्शंस में। कहते नहीं, फिर अब मैं अलग अलग लगूंगी और लोगों की बातों ना मानूंगी तो ये होगा। वो आपको उस वक्त तो खुश कर रहे होते हैं, बाद में बातें करते हैं, कहते हैं वो देखा वो फलां आई थी वहाँ भी, ये भी कर रही थी, ये वही हैं जो कुरान पढ़ती हैं, ये वही हैं जो पढ़ाती हैं। तो हमारी तो बस एक बात है, 100 बातों की एक बात रख लें, अब हमारी इज्जत सिर्फ कुरान के साथ है। आप कुरान वाला बन के दिखाएं, कुरान वाले बन के जिएं, कुरान आपका ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, अमल। आप खुशियों में जाएं, गमों में जाएं, बड़े होटलों में जाएं, बसों में बैठें, ट्रेनों में बैठें, हर जगह हमारी शान दीन के साथ है। हम जब थुड़दिली होती है ना, जैसे आप कहते नहीं अब सब ने नहीं किया, मिसाल दे रही हूँ, यहाँ कोई पर्दे की बात नहीं कर रही, अगली आयतों में वैसे ही मौजू आ रहा है, लेकिन मिसाल दे रही हूँ कि हम बाज़ दफ़ा अच्छा पहन ओढ़ लेते हैं इस्लामी अटायर में, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं अब देखो ना यहाँ सभी ऐसे नहीं, मैं बुरी लगूंगी, तो आप उसको खोल के बैठ जाते हैं, तो लोग बाद में हंसेंगे, ये देखें ये ऐसी थी। यानी बस अब फैसला कर लीजिए, अब डिसाइडेड होना ही पड़ेगा, क्या कि आप जिस रास्ते पर चल रही हैं वो अल्लाह का दिया हुआ रास्ता है। इसी तरह आपके अमाल, आप बाज़ दफ़ा घरों में अपना लाइफस्टाइल वही रखना चाहती हैं जो आपकी दूसरी देवरानियाँ, जिठानियाँ, सिस्टर्स या जो आपके तबके की दूसरी ख़वातीन करती हैं, लोग बाद में बातें करेंगे। मान लीजिए, कह दें, रियलाइज, एक्सेप्ट इट, हाँ मेरी अब यही इज्जत है, मेरी यही शान है। और जितनी आप अपनी इस तालीम, तदरीस, इस पे अमल, अपने रवैयों को इज्जत देंगी ना, उतनी लोग भी इसको इज्जत देंगे। और अगर आप उनकी मजबूरियों में साथ उनके फिल्में भी देखने चले जाएं, और आप उनकी मजबूरियों में उनके साथ सारे गलत काम कर ले, कभी ऐसे दीन की इज्जत नहीं होती। मुझे लोग कहते हैं कि लोग कुरान तो पढ़ते हैं, ऐसी आयतों से ऊपर फटाफट क्यों गुजर जाते हैं जिस पर खुद अमल नहीं करते। ये लोगों के कमेंट्स हैं, पता नहीं मेरे ऊपर लोग कितने देते होंगे, लेकिन सामने मुंह पे नहीं लोग देते, बाद में करते हैं, कहते हैं फलां भी तो कुरान पढ़ाते हैं, उनके घर ऐसे हैं। तो आप उनको मत देखिए, अल्लाह के नबी की बीवियों को देख लें। रोल मॉडल्स हमारे जैसे लोग नहीं हैं, खास लोग हैं। या निसान नबी यलस्तुन नकाहदिम मिन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। इन्हें तकईतुन्ना, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो। इसका इजहार कहाँ से होगा? अब यहाँ से आप काउंट करते जाएं कि कैसे पता चलता है कि दिलों में तकवा आ गया। कुछ सींग निकल आते हैं, कंधों पे पर निकल आते हैं, कुछ नहीं होगा, रवैयों से पता चलेगा। क्या? फला तहदा नबिल कौल, बस उस नरमी से बात न करो कि फयत मल्लसिफी कल्बी ही मरदुन, कि वो मर्द जिसके दिल में रोग है वो तमा करने लगे। और वकुल न कौलम मारूफा, बात करो तो बावकार अंदाज से करो। ये है तकवा का पहला इजहार, कि जब गैर मर्दों से बात करनी पड़े तो बड़ी नपीतुली बात करो, अंदाज में शोखी ना हो, दिल फेंक बात ना हो, अगले को खुद ही जरूरत न मिलने वाला अंदाज हो, बेतकल्लुफी का अंदाज ना हो, टू दी पॉइंट बात करो, जितनी ज़रूरत है काम की वो बात करो, एक्स्ट्रा बात ना करो। इसलिए कि जब औरत मर्द को ज़रा सा मौका देती है ना, तो मर्द उससे ज़्यादा मौका ले जाता है, किसी भी रंग रूप में। इसको सिर्फ बुराई के रूप में मत समझिए। मर्दों की एक ख्वाहिश होती है कि औरत हमसे बेतकल्लुफ़ हो, चाहे वो उसको खाला जी, आंटी जी, या भाभी, या फलां फलां कह दे, या उनको मैडम मैडम कह दें, या उनको बॉस कह दें, ये अलग बात है। जब औरत बेतकल्लुफ़ हो जाती है ना, तो मर्द के लिए रास्ते खुल जाते हैं। जैसे औरत का बेतकल्लुफ़ ना होना एक डॉट है, सील्ड है, जब वो सील खुलती है ना तो मर झांकते हैं अंदर। अपनी सील ना तोड़ो। बात कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। ये नहीं कहा कि फला ततकल्लमन्ना, कलाम ना करो उनसे। तो यहाँ से फिर वो मसला भी समझ आता है कि क्या औरत गैर मर्द से बात कर सकती है, और दूसरी बात है कि क्या औरत की आवाज़ औरा है। औरा कहते हैं पर्दे को। ये बहुत मुख्तलिफ मसला है। इस पे इतनी शिद्दत बरती गई किसी जगह, और कहीं इतनी ज़्यादा रुख्सत बरती गई कि दोनों का अंजाम तबाही है। हम कुरान की इस आयत की रोशनी में देख लेते हैं कि औरत की आवाज़ का क्या हुक्म है, और उसका बेस्ट तरीका कुरान की आयत और अल्लाह के नबी की अहदीस और प्लस आपका अमल। पहली बात है, कुरान की आयत ने तो आपको दो लफ्ज़ों में बता दिया कि फ़ला तहदान बिल कौल, ना तुम झुकाओ, नरम बात ना करो। लफ्ज़ तहदान का रूट देखिए क्या होगा, खुशियो खुदू, पढ़े ना वही लफ्ज़ है ये भी। नरम बात ना करो, लोच वाली बात ना करो, ऐसी ढीली ढाली बातें ना करो कि वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मायल हो जाए। बस इतनी बात कही। होगा क्या कि जिसके दिल में बीमारी है वो फिर सोचेगा कि तुम शायद मुझे अवेलेबल हो। दिल फेंक बातें करने वाली बात दुरुस्त नहीं। आप कहेंगे अच्छा ये तो अपने हम उम्रों की बात हो रही है ना, अपनों से बड़ों से तो कर सकते हैं ना। नहीं, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता और औरत कभी भी बच्ची नहीं होती। औरत औरत है, मर्द मर्द है, उम्र का फ़र्क नहीं है। बाज लोग कहते हैं नहीं, बूढ़े लोगों से ऐसे बात कर लो, जवान से ऐसे। ठीक है, एक खास हद तक कोई ऐसा मामला, इज्जत के साथ आपके बाप के दोस्त हैं, आपके नाना की उम्र के मर्द हैं, दादा की उम्र के मर्द हैं, कोई बात नहीं, आप उनसे पूछिए क्या हाल है आपका, खैरियत है, कुछ खिदमत कर दूं। औरत की सिर्फ अंदाज में ही सख्ती या नरमी नहीं होती, उसके अल्फाज के चुनाव और उसके स्टाइल में भी होती है। इस्लाम ने बिल्कुल मना नहीं किया कि बिल्कुल बात ना करो, और ये भी नहीं कह दिया कि हर बात करो, बल्कि लोच वाली बातें ना करो, नरम बातें ना करो, ज़रूरत पड़ने पे बात की जा सकती है। ये मुत्तफिका मसला है कि औरत की आवाज़ औरा नहीं है। क्यों? इसके कई दलाइल हदीसें मिलेंगे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी सहाबियात से बात करते थे, आप उनको दर्स भी देते थे, औरतें आपसे सवाल पूछती थी, पर्दे के पीछे से बात भी होती थी। सबसे बड़ी इसकी मिसाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन नेस्फ सदी, हाफ सेंचुरी यानी 50 ईयर्स तक, आलमोस्ट कह रही हूँ 57-58 की होके इनकी डेथ हुई थी, तकरीबन 40 से ऊपर की होके ये फौत हुई। और अल्लाह के नबी के बाद जो बेस्ट टीचर थी दूसरे सहाबा के लिए और बाद वालों के लिए, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। बड़े बड़े सहाबी इनके शागिर्द थे, इनसे इल्म हासिल करते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजी मसाइल, आपके शोहर बीवी के मामलात, गुसल की बातें, आपके घर के अंदर के मामलात हज़रत आयशा से हमें मिले। हज़रत आयशा हदीस की रिवायत करने वालों में दूसरे नंबर पे आती हैं। सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा हैं यानी मर्द हैं, और दूसरे नंबर पे एक औरत आती है। वो हदीसें कैसे गईं? लिख लिख के दी मर्दों को। आवाज़ गई होगी ना, लिखना तो बाद में शुरू हुआ। आज भी उस मुस्नद आयशा के नाम पे इतनी मोटी किताब है, हज़रत आयशा के फतावा को जमा करें तो एक पूरी बुक बनती है। तो हज़रत आयशा इसकी बहुत बड़ी दलील है। फिर उम्मे सलमा, दूसरी बीवी अल्लाह के नबी की जो इल्म के साथ मेलान रखती थी, वो उम्मे सलमा थी। अगली आयतों में भी इंशाल्लाह कुछ जिक्र आएगा कि किस तरह उनको हुक्म दिया गया कि तुम अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए डिवोट कर दो, और अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद आपकी बीवियों का दोबारा शादी ना करना। उसमें एक ये भी हिकमत थी कि जो प्योर इल्म उनको अल्लाह के नबी के घराने में रहने से मिल चुका है, अब वो दूसरों तक आम हो जाए। आप देखिए कि इस्लाम जब आया तो उस वक़्त औरत की हालत ना गुफ्ता बे थी। औरत को तो इंसान भी नहीं समझा जाता था, गिरी हुई मखलूक समझा जाता था। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दिलाई। इस्लाम से पहले औरत को महज शहवत रानी का ज़रिया समझते थे, सेक्स ऑब्जेक्ट बन के रह गई थी औरत। और औरत और मर्द के ताल्लुक़ के बीच में सिर्फ जो ताल्लुक़ था वो हैवानी ताल्लुक़ समझा जाता था, सिर्फ मर्द की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैदा होगी। लेकिन इस्लाम ने औरत को बड़ी शान दी, इज़्ज़त दी, और कहा कि तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बात करने के स्टाइल से भी दूसरा बीमार ना हो। अब आप कहते हैं जी फलां बड़ा नेक है, हमारी नीयत बड़ी अच्छी है, हम कुछ भी बात करें वो तो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो नबी सल्लम की बीवियों से ज़्यादा नेक औरतें कोई नहीं हो सकती और सहाबा कराम से ज़्यादा नेक मर्द कोई नहीं हो सकते। हमें कह दिया, ये तो ऐसी कोई के चोर तो आते कोई नहीं, दरवाज़े खुले छोड़ के सो जाते हैं। चोरियाँ यहाँ तो होती कोई नहीं, खुले डायमंड्स अपने ले ले के हाथों में फिरते हैं, बाहर रख देते हैं, कोई कुछ नहीं होता। नहीं, फ़यतमा लज़ीफ़ी कल्बी, उसके दिल में बीमारी है। देखिए, हर मर्द औरत से शादी नहीं करना चाहता। बस मर्द सिर्फ आदतन औरतों से बातें करने को पसंद करते हैं, चुटकले लेने। आप कभी 40s 50s के मर्दों औरतों को भी बातें करते देखा करें, उस वक्त तो वैसे ही एक जहन में आ जाता है, और ख़ास तौर पे जब शादी हो चुकी होती है। अब मेरी तो हो चुकी है, किसी और से नहीं होनी। आप ज़रा किसी मिक्स गैदरिंग के फंक्शन को जहन में ले आए, अगर कभी देखा है। भाई से तो बात कम है, यानी दोस्त से नहीं, भाभी का क्या हाल है। और भाभी भी जो है वो शौहर कम बात करते हैं अपने दोस्तों से, उनकी बेगमात जो है भाभी ज़्यादा करती हैं। इस्लामी कल्चर नहीं है, इससे यकीनन बिगाड़ पैदा होता है। घरों की बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह यह है कि बाहर की औरतें दिल फेंक होती हैं। अब घर की बीवी है, उसने तो सब्ज़ी भी मांगनी, आटा भी मांगना, उसको तो पैसे भी चाहिए। बाहर वाली ने सिर्फ लाड के साथ बात करनी है, फ़र्क होता है। फिर उसके बाद औरत बात करती है कहीं, मिसाल है फ़ोन पर आप बात करते हैं, कैसे करें? बाज़ कहते हैं आवाज़ मोटी करके बोलो, बाज़ कहते हैं कपड़ा रख के बोलो। तकवा और चीज़ है, आपकी मर्ज़ी। बाज़ कहते हैं जी सहाबियात अपने मुंह में कपड़ा रख लेती थी। लेकिन आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि इस दुनिया का निज़ाम चल सकता है औरत के बात किए बग़ैर, या मर्द उसकी बात ना सुने। हमारे दीनी तबके में इस चीज़ का तासुब बहुत है। कई लोग सिर्फ इसलिए दीन सीखने सिखाने से महरूम हो जाते हैं, वो कहते हैं हम औरत की बात नहीं सुनेंगे। औरत बोलती है, अच्छा औरत पढ़ाती है, औरत की रिकॉर्डिंग होती है, मर्द भी सुनते हैं। भाई जिस चीज़ पे अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई वो दुरुस्त नहीं। अब एक चीज़ है, मिसाल देती हूँ कि इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप सब सिस्टर्स हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे और आपके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, स्टूडेंट टीचर रिलेशन ज़रूर बनता है। अब कोई कहे कि आवाज़ में पर्दा नहीं, लाएँ इधर मर्दों को बिठा दें, मैं अपने लिए तो इसको नहीं पसंद करती। बाज पर्दे में पीछे बिठाएं, कभी कहीं ऐसा हो लोग फैमिली गेट टुगेदर्स करते हैं, वो कहते हैं हमारे कुछ मर्द हैं वो सुन ले। मैंने कहा कहीं भी बैठ के सुन ले, मुझे ना बताएं, ना उनको बताएं मेरी बात ना मुझे बताएं। कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। असल जो ख़राबी है ना वो कोऑर्डिनेशन है, जो मेरी नज़र में, मैंने इस मौजू को जितना भी समझा, आपका बोन ना बने। अब मैंने आपको कह दिया ये रिकॉर्डिंग हो गई, अब ये CD कैसेट कोई भी कहीं सुनता है, मुझे तो नहीं पता। असल चीज़ जो है ना वो इमोशंस का पास होना है। लेकिन वही लोग जो खबरें औरतों से सुनते हैं, गाने औरतों के, ड्रामे औरतों के, टेलीफोन पे कॉल्स ख़वातीन की, जूँ ही दीन की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी औरत की बात है, और वो औरत औरतों की बता रही है, आप ना सुने। बस लोग सिर्फ इस बात पे इतराज़ करते हैं कि फलां इसलिए ख़राब है क्योंकि वो उसकी सीरीज़ या उसकी कैसेट्स बाहर जाती हैं और मर्द भी सुनते हैं। आप ना सुने। जिस मर्द को ये शक पड़ता है ना कि किसी औरत का लेक्चर सुन के भी मेरे दिल में ख्याल बुरा आता है, ना सुने। मर्द बहुत है माशाल्लाह, लेकिन अगर किसी को अपने जज्बात पे काबू है और वो दीन सीखना चाहता है। आप देखिए कि जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को पकड़ता है ना, वो ये तो नहीं कहता कि डॉक्टर कौन है, जिसको नज़र बीमारी पे। देखिए औरत के अंदर फितरी तौर पे ममता चुके हैं ना, तो जज्बात नरम होते हैं। आप मर्द की स्पीच सुने, जोश, गुस्सा, उनकी मर्दानगी है, कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन कई मर्द इंतहाई सॉफ्ट बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी नज़रों में कई ऐसे हैं कि बात करते हैं बिल्कुल जज्बात की हद तक जाते हैं। लेकिन अमूमन देखा गया कि औरत में इमोशनल टच ज़्यादा होता है, वो बच्चे के भी जज्बात समझती है, वो सारा दिन असल में जज्बात ही को तो पाल रही होती है, हर एक के चेहरे ही देख रही होती है कि इनका मूड क्यों बिगड़ा हुआ है, अब इनको क्या मसला हो गया, अब इनका क्या प्रॉब्लम है। फितरी बात है, जब औरत बात करती है ना तो वो लोगों को अपने अंदर की आवाज़ लगती है, तसन्नो नहीं होता। मुझे तो लगता है, मैं तो जब बात करती हूँ बिल्कुल ऐसी कर रही होती हूँ कि मैं शीशे में बैठी अपने से बातें कर रही हूँ। मैंने कभी सच्ची बातें बात करते हुए ये नहीं सोचा कि मैं लग कैसी रही हूँ या मेरी आवाज़ सुन के किसी को क्या लग रहा है। हमेशा ये होता है कि ये बात करने से अगले के दिल में जा रही है कि नहीं जा रही, कानों पे पड़ रही है, दिमाग में पड़ रही है, या ऊपर से गुजर रही है, या गुस्सा ही पैदा हो रहा है। बस दफ़ा ऐसी सख्त गुस्से की आवाज़ें होती हैं कि बच्चे डर जाते हैं कि ये क्यों इतना चीख रहे हैं, इनको इतना गुस्सा किस पे आ रहा है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी।